हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान की सेवा में जब लोग हम लोग शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा उत्साह होता है उस समय। शुरुआत में जब पहली बार कृष्ण से हम लोग संबंध करते हैं तो बहुत उत्साह रहता है, और हम लोग नए नए रहते हैं तो हम लोग बहुत नम्र भी रहते हैं उस समय। सब भक्त हमको एकदम प्योर डिवोटी दिखाई पड़ते हैं। जितने भी भक्त आपके सामने हैं वो सब आपको लगते हैं प्योर डिवोटीज हैं, इसलिए आप सबके सामने बहुत नम्र रहते हो और आनंद का अनुभव करते हैं। बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है बहुत सारा। जैसे हमारा दिन आगे जाता है ना, तो फिर उतनी नम्रता नहीं रहती। आपको लगता है मैं भी अभी एक्सपीरियंस हो गया मुझे भक्ति का, जब का मैं भी मंदिर जाता हूँ, मैं भी सेवा करता हूँ, फिर हम लोग सीनियर बन जाते हैं। क्योंकि हम लोग भौतिक दुनिया से ही आए हैं, कि स्वर्ग से तो नहीं आए हैं। आए होंगे कुछ लोग स्वर्ग से भी, लेकिन अधिकतर हम लोग इसी दुनिया के क्राउड से ही डिवोटी बने हुए हैं। तो ये दुनिया में जो भी कुछ विकार हैं, अहंकार है, द्वेष है, कंपटीशन है, वो सारे विकार हमारे अंदर भी रहते हैं। हम लोग का प्योर डिवोटी के रूप में अंदर प्रवेश नहीं किया है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे सीनियर बन जाते हैं ना हम लोग, मतलब सीनियर का मतलब ऐसा नहीं कि पोजीशन से सीनियर, साल से भी सीनियर। मैं 5 साल हो गए, मैं भी अटेंडेंट के रूप में यहाँ पर 10 साल से हूँ। तो तुरंत नए अटेंडेंट को फिर हम लोग दादागिरी दिखाते चालू करते हैं, नए अटेंडेंट को डांटना शुरू करते हैं, यही दिखाने के लिए। खाली कुछ दिखाना है कि मैं यहाँ पर सीनियर हूँ, तुम्हारे से पहले आया हूँ, सबको जानता हूँ यहाँ पर, बहुत मेरे को एक्सपीरियंस है। इसी भाव से दूसरों को हरासमेंट शुरू होता है। तो वो काल का सीनियरिटी हो गया, और दूसरा सीनियरिटी हो गया पद का, कि सडनली हम लोग सुपरवाइजर बन जाते हैं, सडनली हम लोग मैनेजर बन जाते हैं, या और कुछ सीनियर ऑफिसर, सीनियर मैनेजर, सीनियर डायरेक्टर, व्हाटएवर। तो वो जैसे ही कुर्सी आती ना हमारे हाथ में, तुरंत एक गर्व उत्पन्न होता है, और फिर वो गर्व के कारण हम फिर दूसरों को रूल करना चाहते हैं। वो जो पहले नहीं कर पाए थे वो अभी करना चाहते हैं। तो पहले हमको लगता कि अगर मैं काश अधिकारी पद में होता तो मैं भी इसको कुचल देता ऐसा होता है ना बहुत सारे। लेकिन मैं अभी इक्वल हूँ, अभी तो अधिकार पद तो नहीं है, और अधिकार पद व्यक्ति जो है वो मेरी बात से सहमत नहीं है, तो जो डांट मुझे लगाने की इच्छा है वो नहीं लगा सकता हूँ। तो फिर सारी बातें फिर वो अभी हम करना चाहते हैं जब हम सीनियर बन गए। तो प्रश्न ये उठता है कि ये सब में सही सेवा किधर रह गई, जो सेवा के लिए हम लोग आए थे उसका क्या हुआ। तो सेवा का माध्यम जो है वो कृष्ण के साथ संबंध करने का सबसे पावरफुल तरीका है। वो सेवा इज दी ओनली मोस्ट पावरफुल मेथड टू कॉन्स्टेंटली रिमेन कनेक्टेड विद गॉड। तो माया चुप नहीं बैठने वाली है। आपने सबसे बेस्ट अगर हथियार उसके खिलाफ खोला है तो वो भी अपना पूरा शक्ति के साथ में आपके साथ युद्ध खेलेंगे। बाकी जो डेमीगॉड वर्शिप करते हैं, जो इधर उधर कर्मकांड करते हैं, उनको मालूम है ये तो मेरे ही गोद में है, क्या है रे, कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लोग छूट रहे हैं मेरे गोद में से, ये लोग कृष्ण की शरण में जा रहे हैं और अभी मेरे खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं मुझे कि हम नहीं आएंगे आपके अंडर, कृष्ण के अंडर जाएंगे। तो माया फिर अपने पूरे शक्ति के साथ में वो भक्त के ऊपर हमला बोल देती है। और माया का हमला मतलब क्या, द्वेष, झगड़ा, पद का गर्व, प्राइड, और एक और होता है, वो होता है भोग। यानी कि जैसे मैं कुर्सी पे आ गया तो कुर्सी का भोग, मुझे 4 सर्वेंट चाहिए, मुझे वो ड्राइवर चाहिए, मुझे ये हाथ पे लाके देना चाहिए, जैसे मैं आऊँगा मेरे बैग पकड़ के भाग भाग के कोई लाके आना चाहिए, और मेरे जूते अगर वहाँ पर है तुरंत यहाँ पर लाके देना चाहिए, या और कोई घर में कुछ काम है, ए अभी मेरे बीमार हो गए, जरे ये लो 100 रुपया सब्जी लेके आओ तुरंत, अभी आज मेरी बीमार है। तो वो क्या हो गया, पद का जो अधिकार है ना उसका भोग लेना शुरू करते हैं हम लोग। लेकिन पद जो हमको मिलता है ना वो हमारी सेवा को बढ़ाने के लिए मिलता है। अगर आपने अच्छी सेवा किया है और आपके सेवा से भगवान प्रसन्न है तो आपको और अच्छी सेवा करने के लिए फिर कुछ फैसिलिटी मिलती है। जैसे पुराने ज़माने में बुक डिस्ट्रीब्यूशन रोड पे करते थे, अच्छा किया आपने, फिर आपको व्हीकल मिलेगा, ड्राइवर मिलेगा, थोड़ी सुविधा मिलेगी, अच्छी तरह से कैप वगैरह सब जैकेट वगैरह मिलेगा पहनने के लिए सर्दी में। तो वो सुविधाएं केवल आपकी सेवा को बढ़ाने के लिए है, वो आपका गर्व बढ़ाने के लिए नहीं कि मैं सीनियर हूँ इसलिए मेरे को ब्लू जैकेट दिया गया है और आप लोग जूनियर हूँ इसलिए आपको पतला रेड जैकेट दिया गया है। तो जैसे मैं ब्लू जैकेट पहनता हूँ तो सबको मालूम पड़ता है कि ये सीनियर ब्रह्मचारी है, जो रेड वाला पतला वाला जैकेट पहना हुआ है सब लोग नए नए हैं, या तो मंदिर में पीले पहनने वाले सब लोग भी नौ से किया है, सैफरन जो है वो सीनियर है, सफ़ेद वाले उससे सीनियर है, ये तो नए नए विद्यार्थी है, ये इसमें है, इसमें VTA में ट्रेनिंग में है, ये तो बाहर गांव से आते हैं, ये यहाँ पर मंदिर के अधिकारी हैं। तो वो एक ना अपने पद का भोग होता है, उसको कभी कभी गुरु भोग भी कहते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा से हमको वो अधिकार प्राप्त होता है। जैसे अधिकार प्राप्त होता है तो हम उस अधिकार का जो फल है उसको भोगना चाहते हैं तुरंत। चलो मेरे लिए सबसे बड़ा ऑफिस होना चाहिए, मेरा ऑफिस बेस्ट जगह पे होना चाहिए, और मेरे कहने पर कोई भी चीज़ चालनी नहीं चाहिए, सब लोगों को मेरी हाँ में हाँ मिलाना चाहिए, ये सब भोग प्रवृत्ति है। तो इस आपका प्रश्न है कि इन सबके बीच में सेवा को कैसे मेंटेन करना है, उसके लिए मेरे पास एक ही उत्तर है केवल, जो मैं पूरे वृंदावन धाम में चिंतन करता रहा उसके ऊपर, वो एक ही उत्तर है, गुरु मुखा पद्मा वाक्या चिते ते कोरिया ऐक्या आर ना कोरी हो मने आशा। बस यही हमारा एक्चुअली प्रोटेक्शन है सबसे बड़ा। अधिकार मिलेगा, अधिकार का लाभ लेने से कोई नुकसान नहीं, समझो मैं अभी मुझे गर्मी की तकलीफ़ है और मुझे अभी श्रद्धानंद में उधर इंडक्शन देना है 6 घंटे का, तो मैं बोलूँगा मुझे AC चाहिए, मैं 1 घंटा भी बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन AC लगाओगे तो मैं शायद 2-3 घंटा अच्छी तरह से बोल पाऊँगा, खड़े खड़े बोलना है, तो मुझे उधर ब्रेकफास्ट की व्यवस्था करो, मेरे लिए ड्राइवर का इंतजाम करो, मैं उडुपी से आ रहा हूँ तो अगर मैं घर पे आके घर से निकलूँगा तो 1 से 1.5 घंटा वेस्ट हो जाएगा, उससे अच्छा मैं घर पे नहीं आता हूँ, सीधा थाने स्टेशन से मैं सीधा श्रद्धानंद पहुँच जाऊँगा, वहीं पर स्नान करूँगा, वहीं ब्रेकफास्ट का इंतजाम करो और डॉन डॉट 9 o'clock मैं वहाँ पर मेरा क्लास शुरू कर दूँगा। तो ये भोग नहीं है, ये तो मैं देख रहा हूँ कि कैसे बेस्ट करूँ, मैं टाइम कैसे बचाऊँ, क्योंकि हनुमान जयंती भी उस दिन 12-22 तारीख को यहाँ पर है, उधर भी मेरा होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि हनुमान जयंती की तो बॉम्बे में हूँ लेकिन कहीं और गया हूँ, चलो वृंदावन में था गौर पूर्णिमा को तो ठीक है, प्रभुपाद जी आए तो मैं वृंदावन था तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर होते हुए भी और कहीं एंगेज हो गया तो दूसरी बात है। तो सुविधा ले रहा हूँ, मैं मांग के ले रहा हूँ कि ये चाहिए मुझे, अभी वृंदावन जाऊँगा तो बोलूँगा कि मैं बीच गर्मी में आ रहा हूँ, मैं रूम से बाहर निकलूँगा नहीं, एक जगह बैठ के सारी मीटिंग सारा गाइडेंस सब कुछ करूँगा मैं, लेकिन वो वहाँ से बरसाना, वहाँ से कुसुम सरोवर, वो ठंडी में किया था वो नहीं करूँगा मैं। तो अपनी सेवा को और अच्छा करने के लिए, अच्छी तरह से करने के लिए आप सुविधा ले सकते हो, लेकिन अपने भोग के लिए और अपने खाली ईगो सेटिस्फाई करने के लिए 4 लोगों को दौड़ा रहे हैं और 5 लोगों को ये कर रहे हैं, बोले मेरे जब मैं श्रद्धानंद पहुँचूंगा तो ब्रेकफास्ट में जो रसगुल्ला चाहिए, ऐसे बोल सकता हूँ, वो तो प्रोवाइड भी करेंगे वो, लेकिन ऐसे करना नहीं चाहिए, मतलब ब्रेकफास्ट होना चाहिए बस, मेरे डाइट के साथ में करो, उसमें स्वीट मत दो, फ्राइड मत दो, सिंपल ब्रेकफास्ट बना के खिला दो मुझे आप। तो बार बार ना हम लोगों को एक ही बात सोचना है कि हम लोग यहाँ पर क्यों हैं, वाई वी आर हियर, वाई वी आर इन इस्कॉन, वाई वी आर इन भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, तो आप उसका चिंतन करेंगे आपको उसका उत्तर मिलेगा कि मैं यहाँ पर केवल सेवा के रूप में आया हूँ। गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर सीनियर व्यक्ति का खाली एक ही लाभ होना चाहिए, ओनली वन प्रिविलेज द सीनियर पर्सन शुड हैव, क्या है वो, यस एनी एनी गेस, हाँ लोगों को गाइडेंस मिले, और सीनियर आदमी को क्या क्या सोचना चाहिए, मैं सीनियर हो गया अभी तो मेरे लिए अभी क्या भाग गया मेरा अभी?
मोर सेवा,
बस मोर सेवा इज ओनली प्रिविलेज व्हाट सीनियर पर्सन शुड हैव, मोर रिस्पॉन्सिबल सेवा, और जिम्मेदारी से मैं काम करूंगा और ज़्यादा जिम्मेदारी लूंगा किसी प्रोजेक्ट की, आप चिंता मत करो, अभी ये मैं संभाल लूंगा पूरा अभी, और सेवा करूंगा, अधिक सेवा, सेवा की टाइप बदलेगी शायद उम्र होने के बाद में, भाग दौड़ कम हो जाएगी और क्वालिटी सेवा बढ़ेगी और ज़्यादा काम अलग टाइप का होगा, लेकिन सेवा बढ़ेगी, और अगर सेवा नहीं बढ़ रही है तो निश्चित रूप से समझ लेना कि आप माया में कहीं ना कहीं फंस रहे हो, निश्चित रूप से। ऐसा है ना माता जी, देखो समझो आप यहाँ पर अगर पेमेंट नहीं लेते हो, समझो आप सब लोग फ्री में काम करते हो, भगवान की दुनिया से तो आप भोजन तो कर रहे हो ना, भगवान की दुनिया में आप मल मूत्र भी विसर्जित कर रहे हो, भगवान की दुनिया से हवा ले रहे हो, भगवान की दुनिया से सारी फैसिलिटीज कपड़ा भी ले रहे हो, तो जीवन चलाने के लिए हर एक व्यक्ति को प्रकृति से साधन तो जरूरी है ना, और चाहे सन्यासी हो या गृहस्थ हो या कोई भी हो, सबको भोजन चाहिए, सबको वस्त्र चाहिए, सबको निवारा चाहिए, सबको छत चाहिए ऊपर अपने, और श्यामानंद प्रभु को बहुत गर्मी होती है तो उनको एसी भी चाहिए, और अगर गोविंद प्रभु को जाना है तो अमेरिका में फ्लाइट में भी जाना पड़ेगा उसको, है ना, तो वो अगर प्रभुपाद बोलते मैं बैलगाड़ी में अमेरिका जाऊँगा तो फिर बैलगाड़ी में तो इन जिंदगी में पहुँचते नहीं थे वहाँ पर, लेकिन फ्लाइट ले लिया तो 14 बार जाके आए दुनिया भर घूम के, 108 मंदिर खोल दिया उन्होंने, तो वो भोग नहीं है, बिल्कुल भोग नहीं है। आपको अपनी सेवा करने के लिए हर प्रकार की सुविधा आप ले सकते हो, दुनिया बनाई इसलिए भगवान ने, सेवा के लिए आपको क्या चाहिए वो सब आप ले सकते हो, इतना बड़ा मंदिर मार्बल का बनाया क्या जरूरत है इतना बड़ा बनाने का, छोटा बनाओ, लेकिन जितना भव्य बनेगा उतना लोग ज़्यादा आएंगे देखने के लिए, तो क्या है भाई, व्हाट इज़ दिस, उतना अधिक प्रचार होगा। प्रभुपाद ने भी कहा था कि आप, मैं यहाँ पर झूं पर रेत में भी बैठ सकता हूँ, आप लोग आएंगे क्या सुनने के लिए? नहीं आएंगे, इसलिए मैंने इतना बड़ा मार्बल का मंदिर बनाया है, अभी आप लोग आके देखते हो, बड़ा खाते हो, थोड़ा भगवान को भी देखते हो और कथा भी सुनते हो। तो रही बात रिम्यूनरेशन की, तो एक ब्रह्मचारी है वो पैसा नहीं लेता, लेकिन हर टैक्सी का भाड़ा मंदिर को सबमिट करता है कि नहीं, मंदिर में रोटी सब्जी दाल सब खाता है कि नहीं, स्वीट भी खाता है, महाप्रसाद भी खाता है, उसके लिए लॉकर भी दिया हुआ है, उसके लिए कपड़े भी दिए गए हैं, शायद आपके इतने 50 जोड़ी नहीं रहेगा उसके पास में, उसके पास 2 जोड़ी रहेगा, 3 जोड़ी रहेगा, लेकिन जब भी 1 जोड़ी फटती है तो उसको अप्लाई करके दूसरा जोड़ी मंगाना पड़ता है, अगर वो समझो अच्छा प्रीचर है तो उसको 2 जोड़ी अच्छे कपड़े भी लेके देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि भाई वो ताजमहल में क्लास देने जा रहा है और यहाँ पर एक होल है उसके कुर्ता में, तो वो नहीं चलेगा, मंदिर में चलेगा मंगल आरती में, लेकिन ताजमहल में क्लास देना है अगर किसी बड़े कॉन्फ्रेंस में तो उसको एक शॉल वहाँ पर सैफरन रख के एक अच्छा कपड़ा पहन के जाना पड़ेगा। तो वो लेकिन ब्रह्मचारी, कभी कभी ऐसा लगता है कि ब्रह्मचारी के ऊपर, सीनियर ब्रह्मचारी के ऊपर एक गृहस्थ से भी अधिक बहुत खर्च होता है एक्चुअली स्पीकिंग, क्योंकि आज वो कलकत्ता में है, कल वो पंढरपुर में है, बाद में रत्नागिरी में है, उधर फिर देखने यूके में है, बाद में रसिया में है, उसके ऊपर मेरे ख्याल से आप सबसे भी ज़्यादा अधिक खर्च होता रहेगा, खाली वो पगार नहीं ले रहा है, महीने का 50,000 रुपये हाथ में नहीं ले रहा है वो, लेकिन गृहस्थों का जो काम है, गृहस्थों का जो काम है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, गृहस्थों का जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन, वो लोगों से सॉक्स के लिए पैसे नहीं मांगते थे बार बार मंदिर की अथॉरिटी से, मैं भी फुल टाइम रह चुका हूँ तो उस टाइम ये डिस्कशन हुआ था, ये गृहस्थ आदमी वो हर टाइम, ये मेरे बेबी के नैपी के लिए, हाँ ये मेरे बेबी के लंगोटी के लिए, ये मेरे बेबी के बिब के लिए, ये मे भी हर टाइम वो अगर मांगता रहेगा तो ये गृहस्थ की जो स्थिति है उसके लिए अनुकूल नहीं है, बहुत एम्बेरसिंग है उसके लिए। अभी मैं कुछ वस्तुओं का नाम भी यहाँ पर ले सकता नहीं हूँ जो बीवी की ज़रूरत होती है, तो मैं वो कैसे वो मंदिर के अधिकारियों को बोलूँगा कि मुझे ये भी चाहिए, तो उसके लिए सिस्टम कैसा है कि आप एक अलाउंस ले लो 2,000 रुपये का, उसमें आपका जो भी सॉक्स है, वो क्या आपको कैंची चाहिए, क्या आपको ब्लेड चाहिए, वो ले लो उसके अंदर, और बाकी सारा खर्चा मंदिर करेगा आपका। वैसे हम लोग रह चुके हैं कई साल, मैं कई साल मंदिर में रह चुका हूँ, एक अलाउंस देते थे हमको, खाना पीना देते थे, बाकी सारा प्रचार के लिए जो खर्चा है, पेट्रोल है, टैक्सी है, जो भी कपड़ा लगता है, फीस है बच्चों की, सब भरते थे मंदिर। फिर मंदिर छोड़ के जब गुरुजी ने कहा कि आप बाहर आ जाओ, तो फिर यहाँ पर जॉब हुआ हमारा, जॉब हमारे क्वालिफिकेशन जॉब के अनुसार हमको तनख्वाह फिक्स हो गई, लेकिन मैं बार बार कहते रहता हूँ कि अगर आप तनख्वाह ले रहे हो तो तनख्वाह को देख के काम मत करो। 3,000 दिया ना, तो 3,000 का काम करूँगा मैं, ऊपर नहीं काम करूँगा। तो फिर आप यहाँ रह के और बाहर रह के कुछ फ़ायदा नहीं, आपकी कॉन्शियसनेस वही है। बाहर कैसे है, अगर मैं रिलायंस में काम कर रहा हूँ, मेरे को प्रेम नहीं रिलायंस के ऊपर, क्या करूँ मैं, मजबूर हूँ। तो मेरे को कोई भी दिल मेरा वहाँ पर लटका नहीं है, बस जाना है आना है, कोई कंपनी आग लेके डूबे मेरे को मतलब नहीं कुछ, मेरा पगार मिलता रहे बस खत्म। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं ना, यहाँ पर तो हम लोग गुरु जी के लिए काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल केयर डिपार्टमेंट जो गुरु जी का हृदय है उसमें हम लोग सेवा दे रहे हैं। और हमको परिवार चलाने के लिए चाहिए धन, नहीं तो परिवार कैसे चलेगा, गृहस्थी हम लोग, तो एक तनख्वाह भी दी गई है। लेकिन आपको एक फुल टाइम ब्रह्मचारी कैसा रहता है, उसी भाव से आपको काम करना चाहिए। हमको है, हम लोग पगारी लोग, हमारा जॉब भी है, लेकिन जब घर में शादी होती है ना, तो उसमें मेरी बेटी की शादी है और मुझे न्यूज़ आती है कि उधर ना वो दाल ही ख़त्म हो गया, तो मैं बोला मेरे को क्या करने का, मैं तो वो आज डिवोटी को चार्ज दे दिया है, उसका हेडेक है, वो मेरे को मत बुलवा के, ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं? अरे मैंने उसको प्रेम से काम दिया है, लेकिन मेरी शादी में मेहमानों को दाल नहीं मिलेगी तो कष्ट मुझे होना चाहिए ना। तो वो अपनापन जो होता है ना, अपनापन कि मेरी बेटी की शादी है, मैं इधर खड़ा हूँ रिसेप्शन पे, सबको हरी बोल कर रहा हूँ अच्छी तरह से, कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, सज धज के सबको विश कर रहा हूँ, सबको मेहमानों को मिल रहा हूँ, बाकी सारे भक्त लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सब मेरे लिए कर रहे हैं, सो मेरा ही कार्य है। कहीं भी कुछ गड़बड़ हो गया तो मुझे जाके देखना चाहिए वो क्यों नहीं हुआ रहे ऐसा। साथ में एक आदमी रखा था, वो मुझे रिपोर्ट करता था, उसको पूरा अथॉरिटी दिया था जाके चेंज करना, देखना जो भी कुछ है, ऐसा गड़बड़ हुआ तो इसको फोन मिलना है, ये गड़बड़ हुआ तो इन लोगों को जाके मिलना है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक कि प्लान किया था कि अगर छक्के लोग घुस जाते हैं शादी के अंदर समझो, तो किसको आपको बोलना है उस टाइम पे, रिपोर्ट करना है और फिर ये प्रति को बोलना है, वो कौन उसको हैंडल करेगा, वो सब ओरिएंट करके रखा था। लेकिन बाद में मैं ऐसा बोल सकता नहीं हूँ, ये मुझे मत पूछना, मुझे बोर मत करना, अभी मैंने आपको बोला ना मेरा काम नहीं हो, ऐसा बोलेंगे क्या आप? नहीं बोलेंगे। उसी तरह से ये अपना घर है, ये समझ के चलना बहुत ज़रूरी है। मैं तो सोचते रहता हूँ हमेशा कि मैं सेवा कर रहा हूँ और पगार भी ले रहा हूँ, इतना मेरा स्थिति भगवान ने इतना अच्छी तरह से बना के रखा है कि सेवा तो भगवान ने मुझे बहुत पुत दिया हुआ है, दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, ऊपर से मेरे घर चलाने को पगार भी दे रहे हैं, सेटिस्फैक्ट्री पगार दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं एकदम भिक्षुक तरह से, मुझे पुरता ही नहीं है तो दे रहे हो, बाहर से मांगना पड़ता है तो कुछ डिवोटी से चलाने के लिए, ऐसा भी नहीं है। एक रिस्पेक्टेबल डिग्निफाइड आदरपूर्वक लाइफ जीने के लिए जो ज़रूरी है उतना दे रहे हैं। तो लेकिन मैं सोच सकता हूँ कि अरे इतना काम तो अगर मैं रिलायंस में करता था ना तो मुझे 3,00,000 पगार मिलता था, सोचने के लिए कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आप ऐसे सोच के रिलायंस में जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना। और तो 15-15 घंटा काम करके लेंगे, ऊपर से गाली भी देंगे माँ बहन की, और ऊपर टारगेट रखेंगे, आपका ज़िंदगी हराम कर देंगे पूरा। हाँ बराबर है, जैसे माधवानंद प्रभु है, द्वारकाधीश प्रभु है, कभी भी यहाँ से निकलेंगे बाहर ना गिरिराज प्रभु, 3 गुना पैसा कमाएंगे, 3 गुना। ऐसा भी नहीं कि बहुत कष्ट करना पड़ेगा उनको, जैसे जो है वैसे डिमांड उनका है, बाहर जाके बैठेंगे तो 3 गुना आगे आराम से इनकम करेंगे। लेकिन ज़िंदगी केवल इनकम करने के लिए नहीं ना, ज़िंदगी के अंदर हमको अगर गुरु महाराज की सेवा करने का अगर मौका मिल रहा है, हाँ उससे बड़ा वो व्यक्ति पट शिष्य मतलब पट रानी की तरह होता राजा के, जिसको अभी हम लोग ऐसे कुछ गिने चुने लोग हैं जो गुरु महाराज के प्रोजेक्ट में नौकरी काम कुछ कर सकते हैं। सामान प्रभु फ्री में आके सेवा देते हैं, हम लोग पैसा लेके सेवा देते हैं, लेकिन दोनों का भाग्य है कि हम गुरु महाराज के प्रोजेक्ट में अटैच्ड हैं। ऐसा भाग्य हजारों में से एक शिष्य को मिलता है, बाकी सारे शिष्य बाहर नौकरी करते रहते हैं, उनको ऑप्शन नहीं है। कितने लोगों को इच्छा है कि आप लोग कितने भाग्यवान हो कि आप डायरेक्ट गुरु महाराज के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। मुझे भी सपना है मेरा कि मैं एक भी आ जाऊँगा, एक दिन मेरा अगर लोन वोन सब निकल जाएगा, मेरा परिवार थोड़ा सा सेटल हो जाएगा, अभी मेरे को बहुत ज़रूरत है, मेरी मम्मी का कैंसर है, पिताजी को हार्ट अटैक है, बहुत खर्चा है, तो मैं थोड़ा सोचता हूँ उसको सेटल करके आपके पास आ जाऊँ और फ्री में काम करूँ, फिर मैं पैसा ही नहीं लूँगा। ऐसे बहुत लोग सोचते हैं बाहर, लेकिन सोचते रहते हैं, उनके लिए वो मौका नहीं आता है। और आज हम ऑलरेडी यहाँ पर अटैच्ड हैं, हमारा भाग्य क्या है, हम लोग वेट नहीं कर रहे कि अभी 5 साल में थोड़ा कमाऊँगा फिर मैं आके फ्री सेवा दूंगा, नहीं मैं आज से ही इधर लगा हुआ हूँ, ऑलरेडी लगा हूँ, जो भी है आई एम हियर, मेरा भाग्य मैं आज से ही अपना रहा हूँ, तो इसको भूलना नहीं चाहिए। अगर आपको सीनियर होते समय अपने भाव को बनाए रखना है तो आपको सोचना है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। एक तो हम कृष्ण कॉन्शियस एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं। अगर आप डेडिकेटेड भी नहीं हैं तो भी आपके लिए कितना अच्छा है कि आप कृष्ण कॉन्शियस वातावरण में काम कर रहे हैं। यहाँ पर मांस नहीं आता है, शराब जुआ व्यभिचार नशा यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर अधिकतर लोग इसको पालन करने वाले रहते हैं, या तो यहाँ आके पालन करते हैं, घर पे नहीं करते, लेकिन इस वातावरण में पालन करते हैं। यहाँ पर कोई 15 घंटे का काम नहीं करते आप लोग। 6 बजे आए, वापस जाने का बात नहीं करने का, जब तक मैं बैठा हूँ तब तक आपको बैठना है, ऐसा बाहर आपको कथा कहा जाता है। और आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप औरत हो, आदमी हो, बच्चे की एग्जाम है, बीमार है, नो बडी केयर्स, यू हैव टू बी देयर। करना है तो करो, छोड़ के चला दूसरा आदमी आ जाएगा तुरंत, आपकी ज़रूरत नहीं हमको। ऐसा आपको रोज़ सुनना पड़ता है, रोज़। कितना भी अच्छा काम करो आप, एक थोड़ा कंप्लेंट करो, रहना है तो रहो, जाओ, ये वातावरण यहाँ पर नहीं है। ऊपर से आध्यात्मिक वातावरण तो है बहुत जगह पे, बारवाड़ी के भी संस्था में ऐसा रहता है वातावरण, बट जो गोल है यहाँ का, गोल यहाँ का जो लक्ष्य है, वो इतना उच्च आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपका गोल कैसा है, साक्षात गुरु की आप डायरेक्ट सेवा कर रहे हो और साक्षात कृष्ण की डायरेक्ट सेवा कर रहे हो, आपको पता चले या ना चले, हम लोग साक्षात गुरु जी की सेवा में। यहाँ पर जो एक शिष्य फुल टाइम करता है वो आपको पगार के साथ में आपको दिया जा रहा है वो मौका, और साथ साथ आपके ड्यूटी के अंदर आपको उत्सव मिल रहे हैं। अगर मंदिर का मिस हुआ तो भक्ति विधान में मिलेगा आपको, उधर कोई सेवा का मौका नहीं मिलेगा, तो ये उत्सव में आपका ही डोमिनेशन रहेगा, आप चाहे वो सेवा कर सकते हो। आपको कितने यहाँ पर सुरक्षा है अपने लिए, नज़र लोगों की कैसी होती है, नज़र कैसी लोगों की होती है। आप सुंदर हो तो तकलीफ है, नहीं तो भी तकलीफ है आपको। सुंदर नहीं तो आपकी घृणा किया जाएगी हर समय, सुंदरों को बार बार आपको गुरु को देखा जाएगा, आप असुरक्षित हो जाते हो। और थर्ड ये चीज़ है कि आपको काम करते करते ही भक्तों का सत्संग प्राप्त हो रहा है, कितना अच्छा मौका है। ड्यूटी में आपको सत्संग सुनने को मिल रहा है, ड्यूटी में कृष्ण कथा सुनने को मिल रही है, ड्यूटी पर आपको संतों का दर्शन हो रहा है, जो मनुष्य जन्म में बहुत अति दुर्लभ है। मनुष्य जन्म तो दुर्लभ है ही, उसके अंदर भी सही संग प्राप्त होना किसी सही भक्त का सही समय पर अति अति दुर्लभ चीज़ है। वो हमको आए दिन यहाँ पर केवल संग नहीं प्राप्त होता है, उनकी सेवा प्राप्त होती है। जिनकी सेवा प्राप्त करना, आप बोलेंगे मुझे ना वो गिरिराज महाराज के कपड़े धोने की इच्छा है, एक दिन मुझे वो सेवा करनी चाहिए, कभी नहीं मिलेगी आपको सेवा, वो भले ड्रीम ही करते रहोगे। वो आप आएंगे यहाँ पर बोलेंगे प्रभु जी व्हाट अबाउट माय लॉन्ड्री, कैन आई गेट इट डन हियर, ऐसा आपको आके सामने पूछेंगे। व्हाट अबाउट माय धिस, व्हाट अबाउट माय प्रसाद, हु विल ब्रिंग प्रसाद फॉर मी, व्हाट अबाउट माय टेस्ट। दरवाजे पे आपको आपको सेवा देंगे, जिसके लिए मनुष्य तरसता है, जो भक्त है जिसको सेवा चाहिए, बोलते मैं रिलायंस में 12 घंटे काम करता हूँ, विफल सेवन कृपणा दुर्जन, ऐसे पापी लोगों को सेवा करता हूँ, ये बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन एक संत की इच्छा करने सेवा करने के लिए मैं तड़पते रहता हूँ। भक्ति विधान में आए दिन आपको चालू है, मौका मिलते रहता है। आप बोलेंगे माता जी थोड़ा सा आप छोड़ो काम अपना, तुरंत किचन में जाओ, रोटी सब्जी बना के महाराज को खिलाओ, तुरंत वो चेतन चरण प्रभु को डब्बा बनाने का, आज वो बीमार है, तुरंत जाके करो। ऐसे मौके आपको यहाँ मिलते हैं, कदम कदम मिलते हैं, और साथ में आपका काम ही शुद्ध भक्तिपूर्ण सेवा है। आपका ड्यूटी ही, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ना, वो लगता रहेगा क्या माताजी आपने तो बहुत मुझे हेवी लोड दे दिया है, कि इसको तो एक कुछ दिया ही नहीं आपने, मुझे तो इतना लोड दिया है। ये एक माया के अंदर किया हुई बात है, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो एक्चुअल कृष्ण की सेवा ही डायरेक्टली है। आपको पता चले या नहीं चले, इट्स ऑलरेडी कृष्ण सेवा। उतनी आपको अगर बुद्धि होगी, होती है आपके पास, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी भाग्य है मेरा, मेरा सेवा ही भक्तिपूर्ण, ये मेरा काम ही से, हाँ मेरा काम ही सेवा है यहाँ की। माई वर्क इज़ ओनली सर्विस कृष्णा। मुझे अलग से यहाँ पर धंधा करने के लिए अलग टाइम दे के, अलग एनर्जी खर्च करके, अलग से जाकर मंदिर में सेवा करने के लिए मुझे यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर के लोग क्या करते, जो भक्त लोग, अच्छे अच्छे भक्त लोग बाहर काम करते हैं, पूरा दिन माया, पॉलिटिक्स, द्वेष, यू नो, लोगों को पूरा लूट लेना, ऐसे काम करके सेपरेटली दिमाग को, मति को शुद्ध करने के लिए संडे को जाके फिर कुछ सेवा करते हैं मंदिर में, बैलेंस करने के लिए। चलो भाई अभी पक गया, मैं अभी जाके थोड़ा सा सब्जी काट के आता हूँ मंदिर में, भक्तों के बीच में कथा सुनते सुनते सब्जी काट के आता हूँ, ऐसा लोगों का भाव है। पर हमारा यहाँ पर तो दिन रात सेवा ही सेवा है। चाहे रथ घुमाओ, चाहे प्रीचिंग करो, चाहे डेथ केयर करो, चाहे प्रवचन करो, मेरा मेरा कितना भाग्य देखो, मुझे इतने डिमांड्स हैं यहाँ पर कि मैं पूरा नहीं कर पाता उसको, कितने कितने लेक्चर देने का है, बाप रे, नो रेस्ट, आई टू से नो समटाइम, मंडे को भी क्लास देने का शाम को था, लेकिन देर इज नो एनर्जी एंड टाइम ओनली, कितने क्लास देना है, इतने मौके हैं इधर। अभी इंडक्शन प्रोग्राम मतलब क्या है बताओ, डायरेक्ट प्रीचिंग है वो, इनडायरेक्ट वे में आपको स्टाफ को भक्त बनाने के लिए गाइडलाइन बना के रखा है, वैसे कुछ भी बोल नाम दो उसको आप, लेकिन है तो कृष्ण की बातें पूरी उसके अंदर, प्रभुपाद की बातें हैं, प्रभुपाद की शिक्षा क्या है हमारे हॉस्पिटल में, ये 10 जो नित्य चिंतन बनाया है वो क्या है, वो इट्स ओनली कृष्ण कॉन्शियस गाइडलाइंस, वैष्णव शिष्टाचार है पूरा। दोबारा कृष्ण के चरण में आप रहेंगे तो कृष्ण आपका सब क्षेम कुशल संभालेंगे। तो अगर ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी आपके प्रश्न का उत्तर ही दे रहा हूँ मैं, कैसे आपको अपनी भावना को मेंटेन करना है, अगर आप सदैव इस चीज़ को याद करते हो मेरा भाग्य यहाँ पर क्या है, तो आपकी जो कृतज्ञता है बनी रहेगी। द ओनली वे टू मेंटेन योर मूड ऑफ सर्विस इज ग्रैटिट्यूड। मैं मेरे को खाली आप इमेजिन करो कि आज मैं यहाँ से निकल गया और मुझे रिलायंस में बड़ी पोस्ट मिली, HR में किधर भी, यू नो इंस्पायरिंग पीपल, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ट्रेनिंग मैंने पीपल इन मैनेजमेंट, और क्या कहते हैं उसका, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में मुझे शायद मौका मिल सकता है बाहर। मैं जैसे ही यहाँ से बाहर गया ना, मुझे पता चलेगा मैं किन लोगों के बीच में रह रहा हूँ। मेरा कलीग है वो दारू पीता है, दूसरा कलीग जो है रात को विशाखा बजाता है, तीसरा कलीग है शाम को कल पार्टी करके आया, और ऐसा ही सब लोगों का संग रहेगा दिन रात, क्योंकि मैंने 2 साल सऊदी अरब में काम किया है, जिसके साथ बैठ के काम कर रहा हूँ ना सेम टेबल पे, वो कॉन्स्टेंटली मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रच रहा है कॉन्स्टेंटली, हाँ, और कॉन्स्टेंटली सुपीरियर बॉस को जाकर मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ बता रहा है रोज के अत पैमाने पे, डेली। यहाँ पर मुझे मालूम है कि मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर रहा है, जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, हमारे मतभेद होते रहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे शत्रु नहीं है, ये मेरा हनन नहीं करेंगे, ये मेरा विनाश नहीं करेंगे, मतभेद करेंगे, झगड़ा भी करेंगे, लेकिन कभी मेरा विनाश का सोचेंगे नहीं, लेकिन वो कायम आपका विनाश का सोचते रहते हैं। तो कैसा ना, रोज जो राजा रोज पंच पकवान खाता है, हा? रोज हमारे मराठी में कहावत है राजाला दिवाली का माहित, तो रोज ही दिवाली के लड्डू फरसान और मिठाई रोज खाते रहते हैं, उसको पता नहीं दिवाली कभी आए कहीं क्या एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं, रोज तो खाते रहते हैं 5 प्रकार की मिठाई। तो वैसे हम लोग अगर रोज कृष्ण कॉन्शियस वातावरण में रहेंगे, रोज सेवा करेंगे, रोज भक्तों का संग मिलेगा, तो आप कह लेंगे क्या है इसमें इतनी बड़ी बात, उधर जो कितना अच्छा है और कितना पगार मिल रहा है, रोज एक बार हो गया ना खा खा के आदत हो गया ना, तो फिर वो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, बोले क्या इधर कोई पगार इंक्रीमेंट नहीं हुआ, इस टाइम तो 200 ही मिला, ये तो क्या रथ यात्रा में अभी तो इतना आइटम बनाया था, अभी तो इस टाइम कुछ है ही नहीं खाने को, क्या मिलता है इधर, यू कैन गो ऑन कंप्लेनिंग, क्या सैलरी मिलती है यहाँ पर, बाहर का तनख्वाह देखो इधर को सैलरी, लोगों को कैसे अट्रैक्ट करें यहाँ पर लोगों को। लेकिन आज के तारीख में सुरक्षित वातावरण और रिस्पेक्टफुल वातावरण कहीं भी नहीं मिलता, कितना भी पकड़ मिलेगा आपको। आप अगर बड़े पोस्ट पर रहेंगे, समझो आप मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर, आपके ऊपर वाइस प्रेसिडेंट है, वो आपको कब आपके माँ के ऊपर गाली देगा आपको पता नहीं है, कमरे में बुलाकर अच्छी तरह से रोड साइड गाली देते हैं, टारगेट चाहिए आपको, रहना है क्या आपको, चले जाओ, 10 दरवाजा उधर है, गेट लाउट। हाँ
और वो लेडी है, वो वाइस प्रेसिडेंट लेडी, वो उसको टाइगर्स खिला,
तो कहने का मतलब क्या है कि आपको लगता है कि मैं रिलायंस में बड़ा बड़ा ऑफिसर हूँ, मेरा बड़ा पैकेज का प्रसाद है, मतलब सैलरी है, और मुझे फ्लाइट का अलाउंस है, इसका लीव फेयर अलाउंस है, मुझे वाइफ के लिए ये मिलता है, गाड़ी का ड्राइवर मिलता है, सारा चीज़ मिलेगा, लेकिन केबिन के अंदर आपको क्या सुनने को मिलेगा ना? बोले मगर बस चले ना, मेरा उसको शूट कर दो अभी, मैं एक मिनट के अंदर, लेकिन नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूँ, मेरे को पगार चाहिए। हाँ, वो उसका अपमान हो रहा है रोज, उसका निंदा नालस्ती हो रही है, उसका स्वाभिमान और उसका सब विनाश हो रहा है उसका, लेकिन उसके लिए कोई उपाय नहीं, उसको रहना है उधर। बोले आप 55 साल की उम्र में और कौन जॉब देगा इतने तनख्वाह वाला?
दूसरा प्रभु जी, उसके साथ जो दूसरा पर्सन था ना, उसको गाली सुनने के अगले दिन हार्ट अटैक आके मर गया। उसके बाद से उसको और टेंशन आ गया। मेरा भी हालत है।
ये सारे हमारे काउंसलर्स के स्टोरीज हैं, रियल स्टोरीज है ये, जो हमारे काउंसलर्स बाहर काम करते हैं, और इसमें से किसी भी चीज का हम लोग यहाँ पर अनुभव नहीं करते, किसी भी चीज का अनुभव करते हैं। अगर कोई चोरी भी करता है ना, तो उसके लिए हम लोग कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं, पब्लिक में उसको हनन मत करो, पब्लिक में उसको अपमान मत करो, उसको अकेले में 2 दिन के बाद में बुलाओ और बात करो, उसको समझाओ, उसके डिग्निटी का ख्याल रखो, क्योंकि चोर को भी चोर कहा जाने पर भी तकलीफ होती है, उसको चोर है वो पक्का 100% चोर, उसको मालूम है, लेकिन उसको भी एक अहंकार होता है कि मैं 4 लोगों के सामने प्रूव किया गया कि मैं चोर हूँ, उसका भी विचार करते हैं। अरे कौन करता है विचार ऐसा? नो वन केयर्स, रहना है तो रोज चले जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट, लोग खड़े जॉब नहीं लोगों के इधर, ऐसे लोगों की धारणा होती है, उनको टारगेट चाहिए। मेरे कितने काउंसलर्स में जो दिल्ली में रहते हैं, जॉब छोड़ के खुद का बिजनेस किया है, अभी आधा कमाते, बोले ठीक है चलेगा, आधा चलेगा मुझे, वो नहीं करना है मुझे अभी, इसके आगे नहीं चाहिए पैसा मुझे, इतना अपमान, इतना बीवी का मुंह देखने को टाइम नहीं है, बच्चे लोग सोते ही दिखते हैं हमेशा कभी भी, इतना दिन रात काम करना है, नहीं चाहिए मुझे अभी। मेरे को शाम को सत्संग जाने की इच्छा है, शाम को बच्चों के साथ खेलने की भी इच्छा है, चलो हाफ पगार मिलेगा ना चलेगा, अपने को नई टीवी देखना है, चलो नहीं चाहिए, नहीं एडवांस गाड़ी नहीं चाहिए, सिंपल गाड़ी लेंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड नीचे करेंगे, लेकिन सुख सुख से रहेंगे। ये स्टैंडर्ड बढ़ा करके हर एक को नया नया मोबाइल चाहिए, हर एक को ये चाहिए, हर एक को वो चाहिए, इतना खर्चा करके नहीं करना है मुझे अभी। मैं भी सऊदी अरब से लौट के इसके लिए आया था कि सऊदी अरब में मैं रहेगा तो 2 रोटी मिलेगी हमको, एक रोटी वो खाएगी बम्बई में, एक रोटी में वहाँ खाएगा, वापस आएगा तो 1 रोटी मिलेगी, लेकिन साथ में बैठ के आधी आधी खाएंगे। बोला आधी आधी खाना साथ में बेटर है 2 खाने के बदले में, ये निर्णय लेके मैं लौट के आया। नहीं तो वहाँ पर बहुत अभी मुझे स्कोप था, वहाँ पर 2 साल के बाद मेरा कर्जा मिट गया था पूरा, अभी फिर कमाई कमाई करने का मौका था, लेकिन ना गुरु जी चाहते थे और ना मुझे भी लग रहा था कि ऐसे विफल कृपण लोगों के बीच में बैठ के मुझे बिल्कुल नहीं करना है। और आज भी मेरा तनख्वाह जितना मैं वहाँ रहता तो आज कमाता, आज भी मेरा तनख्वाह है इतना नहीं है, लेकिन मुझे इतना आनंद है, इतना आनंद है मुझे आपको वर्णन नहीं कर सकता मैं। कैसे आनंद है? मेरी सारी ड्यूटीज धाम में लगी हुई है, देखो आप सोचो, मेरा साल भर का कैलेंडर निकाल के देखो मैं किधर रहता हूँ, कहीं ना कहीं धाम में रहता हूँ, और धाम में नहीं हूँ धाम के बारे में बात करते रहता हूँ, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है, सोचो आप। नई नई कथा पढ़ने को समय नहीं, कथा बोलने का मौका कितना है, इससे बड़े भाग्य की क्या बात हो सकती है। मैं ऐसा जब नया नया भक्त बना था ना, तब मुझे बहुत प्रचार करने की बहुत इच्छा थी, और मैंने बहुत लोगों को प्रचार करके डिवोटी बनाया वगैरह, लेकिन अभी जब भी गृहस्थ हो गया, मैं शादी कार्य किया तो फिर पैसा भी चाहिए, और बहुत सारा गरीबी था उस समय, मेरे पास धन नहीं था, तो मैंने मैंने उससे विचारा था कि क्या ऐसे हो सकता है क्या कि मुझे फुल टाइम प्रीचर बनूं मैं और मुझे तनख्वाह भी मिले उसके बारे उसके लिए, ऐसा मुझे हमेशा आता था मन में विचार, काश ऐसे होता कि मैं फुल टाइम प्रीचिंग करूँ, दिल भर के प्रीचिंग करूँ और मुझे एक तनख्वाह मिले अच्छी सी, ताकि मैं इज्जत से भी रह सकूँ। आज मेरी पोजीशन क्या है? वही पोजीशन है मेरी, आई एम अ फुल टाइम प्रीचर एंड आई गेट अ गुड सैलरी, गुड पोजीशन एंड गुड इंस्टीट्यूशन, गुड पीपल आई एम वर्किंग कॉन्स्टेंटली। मेरा प्रोजेक्ट ऐसे एक वृंदावन में, एक बरसाने में है, हाँ भक्तों के बीच में है, मेरा काम यात्रा देना है, दिन रात में आई एम मेडिटेटिंग कि अभी अगली बार कहाँ ले जाऊँ, अभी यात्रा समझो साउथ इंडिया में हो या द्वारका में हो, लेकिन मेरा माइंड कॉन्सेंट द्वारका में सोच रहा है या साउथ इंडिया के बारे में सोच रहा है। और जब वृंदावन जाता हूँ तो आए दिन यात्रा चलती रहती है, अभी आप आज हॉस्पिस को लोगों लेके मैं वृंदावन बरसाने की यात्रा कर रहा हूँ, कल बरसाने को लेके वृंदावन परिक्रमा दे रहा हूँ, फिर कुसुम सरों के लोगों को लेके मैं संकेत वन और जाओ और कोकिला वन जा रहा हूँ, और फिर वो नित्यानंद महाजन प्रभु को लेके मैं शाम कुटी जा रहा हूँ, ये मेरी सेवा है, इस पार्ट ऑफ माय सर्विस, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। यहाँ से मुझे बाहर निकालो, सारा शून्य हो जाएगा, ही एवरी फॉर्चून शून्य हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा सब कुछ। केवल यहाँ से फिर मैं मैनेजमेंट को ट्रेनिंग दूंगा, बड़े कंपनी में बड़ी बिग कैडर को लेक्चर दूंगा, उनको मैं इंस्पायर करूंगा, लेकिन कृष्ण की एक बात नहीं कर पाऊंगा वहाँ पर मैं, खाली बिजनेस रिजल्ट्स प्रोडक्ट्स प्रॉफिट इस पर मुझे बात करनी पड़ेगी। तो मुझे अगर याद है, रोज याद आती है उसकी, कि आई एम हियर, दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल। हमारा मानो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रॉब्लम एक ही है कि हम सब लोग मिली हुई सेवा को नौकरी में बदल देते हैं, एक ढांचे में, एक गणित में बदल देते हैं उसको। क्यों करूं मैं, मेरे को पगार 1500 बढ़ना चाहिए था, 300 ही बढ़ाया, क्यों करूं, मैंने कर दिया था, ये दुर्भाग्य है हमारा। ये संस्था ने हमको जब मार्केट में मंदी थी, मंदी मतलब ना में क्या होता है, रिसेशन, उसमें सारी कंपनी ने 25% सैलरी कम कर दिया था, इंक्रीमेंट तो भूल जाओ मैडम, 25% सैलरी कम दिया, क्या बोल के दिया था, जब हर साल प्रॉफिट हुआ आपको इंक्रीमेंट देके शेयर किया प्रॉफिट हमने, आज कंपनी लॉस में है आपको वो शेयर करना पड़ेगा, तो 25% सैलरी कम करके काम चलाया और बोला बाकी जिसको नहीं करना है वो जॉब चेंज कर सकते। उस टाइम पे हमारी संस्था ने 11% इंक्रीमेंट दिया भक्ति वेदांत, कितनी गर्व की बने, कितनी जगह जाके बोला भक्ति वेदांत ने इतने बड़े मंदी में पायलट लोगों को 25% कट करके दिया गया है, कितने लोगों को नौकरी से निकाल दिया, बच्चे लोगों को बोला आपको रहना है, रहो, आपको रखने वाले 25% कम करेंगे आपकी, पेपर में कितना बात में आता था मन में, कितना लोगों को बेकार बना दिया, कितना लोगों को सैलरी कम कर दिया, उनको मजबूरी से करना पड़ा। उस टाइम पे भक्ति वेदांत ने 11% इंक्रीमेंट दिया सबको, और ऐसा एक भी साल नहीं गया है कि हमको इंक्रीमेंट नहीं दिया गया है ये बोल के कि आज प्रॉफिट नहीं हुआ है आप लॉस में है। उधर बरसाना वृंदावन में 2-2, 3-3 लाख का एक एक यूनिट में लॉस है, लेकिन हर स्टाफ को हर साल इंक्रीमेंट मिलती है, पगार बढ़ता है उनका हर साल। मैं सबको ये बता के आ रहा हूँ कि आपको पता होगा या नहीं होगा, ये दोनों यूनिट इंडिविजुअल लॉस में चल रहे हैं, फिर भी हमारी संस्था आपको कहीं पर भी कम नहीं कर दे, मैं तो छोड़ दिया, सब लोगों को सैलरी दिया है। मैं बोला क्यों दे रहे हैं, क्यों चल रहा है, क्योंकि ऊपर जो ट्रस्टी बैठे ना उनका कुछ उच्च उद्देश्य लेकर बैठे हैं, इसलिए लॉस में भी चला रहे हैं। भक्ति विधान में भी एकेडी लॉस में चल रहा है फिर भी चला रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है ना वो यहाँ पर धन कमाना नहीं है, इसलिए आप सब लोग यहाँ पर 2-3 लाख का लॉस होने पर भी इंक्रीमेंट लेते हो, सब लोग अपना ड्यूटी में काम करते हो, और ड्यूटी में सत्संग होता है, ड्यूटी में हरिनाम होता है, ड्यूटी भर में हरे कृष्ण महामंत्र चलते रहता है, माँ संदर नहीं आता है, केवल प्रसाद आता है, ठाकुर जी की सेवा होती है, रथ चलता है, कितने भाग्य की बात है, राधा रानी के धाम में बैठे हो। ये रोज याद करेंगे ना, क्यों हम लोग प्रार्थना करते हैं, खड़े रहो प्रभुपाद का, हमने रोज थैंक यू बोलो कि आपने हमको इतना सेवा दिया है, और क्या तनख्वाही थी, मैंने गोप कुमार को 3,500 में अपॉइंट किया था, तब वार्ड बॉय को 1700 पगार मिलता था, आज हमारे वार्ड बॉय मोटरसाइकिल और कार में घूमते हैं, पेंटकर पाड़े में 3-3 रूम का घर बनाया बांध के। मैं सर तुम्ही आता आलात ना वृंदावन वरना, सर या ना इकडे या ना, मी नवीन गाडी घेतली मारुती सुजुकी डिझायर दिखा रहे, वो वार्ड बॉय है, था अभी वार्ड बॉय है, सीनियर हो गया अभी, तो कुछ सीनियर कुछ पुराने वार्ड बॉय अभी सुपरवाइजर हो गए हैं कुछ, मैं दुबे सर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैनेजर थे, अभी उधर के एडमिनिस्ट्रेटर हो गए हैं सिद्धानंद के, पूरा कंप्लीट उनके अंडर है, कंप्लीट एवरीथिंग इज अंडर हिम। तो उनको लगा था कि अरे मुझे क्या भेज रहे हैं, मुझे उधर क्यों भेज रहे हैं, मतलब यहाँ पर नाराज है इसलिए भेज रहे हैं कि क्या है, मैंने नाराज नहीं है, तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है बड़ी, इतनी एक नया यूनिट को डेवलप करने का पूरा जिम्मेदारी आपको का भाग्य है, डोंट थिंक लाइक दिस, दिमाग से निकालो थॉट को, तो बड़ा भाग्य है। किधर अपना भास्कर गदरी, तुरंत वो अच्छी तरह से किया ट्रांजिशन। तो आपके प्रश्न का उत्तर एक ही है, अगर आपका समय जाता है दिमाग में अपनी कुर्सी का गर्मी मत घुसाओ, अगर दिमाग की कुर्सी अगर ज़्यादा नरम नरम हो रही है प्रगति के हिसाब से, तो वो गर्मी को दिमाग में मत घुसाओ, सेवा में लगाओ, और रोज जाके प्रभुपाद को धन्यवाद दो कि आपने रखा है ना, बहुत धन्यवाद है आपका। कई बार लगता है कि जाना चाहिए अभी यहाँ से, नहीं काम करना है मुझे यहाँ पर। ज़रा सोचो कि उसको आपने मन को हाँ बोल दिया कि हाँ आप जो बोल रहे हैं, मन बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, आई विल गो। बाहर जाके क्या हालत होती देखो आप, सड़क का कुत्ता कैसे घूमता है वैसे हमारी हालत हो जाएगी। इट्स अ फैक्ट, मेरी भी ये स्थिति है, द्वारकेश प्रभु की ये स्थिति है कि जाएंगे बाहर वो 3 गुना कमाएंगे, लेकिन कैसे कट प्रैक्टिस, कैसे लूटना लोगों को, कैसे चीटिंग, 10 दवाई लिखेंगे जरूरत नहीं, बिना उसका कमीशन खाएंगे, जबरदस्ती खाना पड़ेगा। मालूम है आप सब लोग चोर बैठे हुए हैं, उनके साथ में काम करना है आपको। इतना अघोरी कर्म है, जहाँ पर सबसे अधिक दया की जरूरत है वहाँ पर सबसे अधिक क्रूरता का प्रदर्शन किया जा रहा है। जहाँ आपसे देख रहे हैं कि मुझे बचाओ, मैं दर्द में हूँ, प्लीज सेव मी, बोल रहे हट रे, पैसा निकल पहले, पैसा है क्या बोल, तो चला बाहर, पेशेंट ला बाहर गया। जिस जगह पे आपसे सबसे अधिक करुणा की उम्मीद है वहाँ पर केवल दुष्टता और क्रूरता की जा रही है, और वहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। ये छोड़ेंगे तो भक्ति वेदांत मतलब कमल से निकल के आप कीचड़ में गिरोगे तुरंत। अभी आप कमल पे हो आराम से, कमल का जो पंखुड़ी है एक कीचड़ का कण उस पर गिरा नहीं है, और कमल छोड़ोगे तो कीचड़ में ही गिरना है आपको, और कोई उसमें तारा नहीं। इसलिए कृतज्ञ रहो, धन्यवाद करो भगवान को कि ऐसा स्वप्न में भी आपको नहीं मिलेगा जैसा आपको आज मिल रहा है। देवता लोग भी आपको देख के तरसते होंगे, कितने भाग्यवान, डायरेक्ट भगवान की सेवा में काम कर रहे हैं। तो देवताओं को भाग्य नहीं, वो भी इंद्रियों के भोग के जाल में फंसे हुए हैं पूरी तरह से। अच्छा शरीर, अच्छी अप्सरा, अच्छा भोजन, अच्छे फूल, अच्छा खाना पीना, सोमरस, बहुत मुश्किल है। वो भी लाइन में खड़े हैं यहाँ पर आने के लिए, और हम लोग ऑलरेडी, मैं कहता हूँ ना, जैसे मुझे भी राधा वल्लभ जी के वो गोसाई है ना, उनका उनके जो पुत्र हैं, अभी वो अधिकारी हो गए हैं, गुरु हो गए हैं वो, उनके पुत्र, वो मुझे बता रहे थे कि मुझ जैसा भाग्यवान कोई नहीं है, और मुझे मेरे इतना आनंदी कोई नहीं है, इतना मेरा भाग्य है, ठाकुर जी की सेवा में डायरेक्ट दिन रात रहता हूँ मैं इधर, मेरे भाग्य की और मेरे आनंद की कोई कंपेयर नहीं कर सकता है, हमसे अधिक श्रेष्ठ जीवन किसका नहीं हो सकता, इतना हम लोग भाग्यशाली है। वो गर्व और दर्प नहीं है, वो हकीकत है। अगर आपको जानकारी है कि मुझे इतना बड़ा पद मिल रहा है, ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ रोज मैं राधा वल्लभ जी की, तो वैसे ही हमको गर्व होना चाहिए कि मेरे इतना भाग्यशाली कोई नहीं। सबसे बेस्ट फिलोसॉफी, सबसे बेस्ट लक्ष्य, सबसे बेस्ट संस्था, सबसे बेस्ट सेवा मुझे प्राप्त हो रही है, हाँ एसोसिएशन, उसमें भी सबसे बेस्ट मिल रहा है हमको जो अवेलेबल है, फिर भी हम लोग कोस रहे हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, यही क्यों, बैठने को जगह नहीं है, इधर क्या है, तो फैसिलिटी नहीं है। मैं दूसरा एक तरीके से बताऊंगा, प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी है, कोई ऐसा कह सकते हैं प्रॉब्लम फ्री जगह है। जब तक आप मटेरियल वर्ल्ड में हो, मटेरियल बॉडी में हो, प्रॉब्लम्स चलते ही रहेंगे। संघर्ष यहाँ पर भी है, शायद आपका बॉस आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, हो सकता है, और बाहर भी संघर्ष है, लेकिन ये संघर्ष बेटर है। अगर आपको दोनों जगह दुख है, दोनों जगह संघर्ष है, तो यहाँ रह के संघर्ष दुख करना आसान है और अच्छा है, आपके हित में है।
और कुछ समय के बाद वो भी हो जाए।
भक्त को संघर्ष है कि नहीं, कितना तकलीफ है, माया यहाँ खींच रही है उसको, यहाँ भोग यहाँ खींच रहा है उसको, यहाँ पर द्वेष हो रहा है, लेकिन अगर वो भक्तों के बीच में है तो उधर आश्रम में भी झगड़े चलते रहते हैं ब्रह्मचारियों के, वो थोड़ी फ्री है, माताजी की कृपा है, माताजी का एक माताजी कमेटी है, उधर भी झगड़े होते रहते हैं, कौन क्लास देगा, कौन ड्यूटी वर्शिप करेगा, किसका छुट्टी है किसका नहीं है, लेकिन वो झगड़े करना अच्छा है भगवान के नाम के, भगवान के अंदर रह के। लेकिन माया के अंदर जाकर झगड़े करोगे ना, नरक का ही रास्ता खुलता है आपके लिए, रॉयल गेटवे टू हेल। यहाँ पर जब संघर्ष करोगे आप भगवान के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो निश्चित रूप से।
एक लड़का ना शिवांग बोल के बोल रहा है, वो आपको जो मिला है ना,
हाँ शिवांग,
शिवांग
अभी आएगा, वो स्पिरिचुअल केयर में आने वाला है।
मैं आना चाहता हूँ, लेकिन झगड़ा या कुछ होगा तो अपराध हो जाएगा, तो मैंने अच्छी तरह से कन्विंस किया, अभी वो
कल अभी काउंसिलिंग मीटिंग में ज्वाइन हो गया वो मेरे, वो भी शिवांग व्यास, वो हरिबालनपुर का ब्रह्मचारी काउंसिलिंग था, अभी वो गृहस्थ आश्रम में आना चाहता है, तो उसको यहाँ पर जॉब चाहिए। अच्छा लड़का है बहुत। नहीं, ये सिंगिंग ऑफ अप्लाइंग ना, आई एम टॉकिंग टू हिम। कहने का मतलब क्या है कि उनको पता है बाहर की दुनिया में क्या लात मारनी पड़ती है ना, क्या सहन करना पड़ता है, उनको पता है। इसलिए मंदिर में भी एक साल बाहर कंपनी में 10,000 के ऊपर तनख्वाह देकर काम करने को लगाना पड़ता है ब्रह्मचारी बनने के पहले, ताकि बाहर का एक बार टेस्ट ले लेगा ना वो, तो अंदर फिर वो ग्रेटफुल रहेगा कि भाई कितना अच्छा है इधर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।